थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आशा करता हूं कि इन दिनों जब हम बाइबल में से दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, तो आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और इस दानियल नबी की पुस्तक के महत्वपूर्ण बातों को सुना और सीखा है। आज हम इस अध्ययन के अंतिम पड़ाव में हैं, जो दानियल नबी की पुस्तक से है। तो मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसको धन्यवाद दें उन सारे आशीषों के लिए कि उसने हम सबों को इस पुस्तक के अध्ययन में सहायता के रूप में दिया है, सीखने के रूप में दिया है। आज हम उससे सामर्थ मांगे कि आज के अध्ययन पर भी सहायता मांगे। हमारे जीवित और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, दानियल नबी की पुस्तक के लिए, जिसके आरंभ से लेकर के आज के इस दिन तक आपने हमें से प्रत्येक को संभाला है, हमारी सहायता और मदद की है। आपके वचनों को समझने और सीखने में आपने हमें सहायता दिया है। आज हम फिर से जब इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं, अंतिम रूप में प्रभु इसकी बातों को सुनना, समझना, सीखना चाहते हैं। हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन को सुने, सीखें, तो प्रभु आपका वचन हमारे हृदयों में कार्य करने पाए। आप मुझसे भी बातचीत करें, मुझे भी सिखाएं। आज फिर से हम सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम दानियल नबी के पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, आइए आप मेरे साथ दानियल की पुस्तक उसके अंतिम अध्याय अर्थात 12 अध्याय को निकाल लीजिए, जिस अध्याय का विषय है महाक्लेश, पुराने नियम के पवित्र जनों और पापियों का पुनरुत्थान, अंत समय के लिए भविष्यवाणी पर मुहर, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि अध्याय 12 अध्याय 10 में आरंभ हुए दर्शन को अंतिम चरण तक पहुंचाता है। यह पूरा वृतांत एक ही दर्शन है, परंतु कुछ लोग यहां और वहां से अंश लेकर अपने विचार के अनुसार इसकी व्याख्या करते हैं। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। इस पद में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है तेरे लोग अर्थात कलीसिया के उठाए जाने के बाद इस्राएली लोग। दूसरा है अंत के दिनों में, पुराने नियम में अंत के दिन नए नियम का अंत समय है, जिसे प्रभु यीशु ने महाक्लेश का समय कहा है। दानियल का यह 17वां सप्ताह है। और तीसरी बात जो हम देखते हैं, दर्शन कुछ दिन के बाद पूरा होगा। इन सब बातों के पूरा होने में बहुत समय लगेगा। अब तक 2500 वर्ष हो गए हैं। मैं यह नहीं जानता कि हम उन दिनों के युग में हैं या नहीं। कलीसिया को पहले उठाया जाएगा, यह परमेश्वर की योजना में अब अगला कदम है। हमारे पास ना तो इसका समय है और न ही इसके चिन्ह हैं। अतः कलीसिया को उठाए जाने की तिथि निर्धारित करना वचन विरोधी है। तो मेरे मित्रों, आइए हम आगे बढ़ें और इस महाक्लेश के विषय में देखें। दानियल 12 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, उसी समय मीकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। हम इस युग को महाक्लेश का समय किस अधिकार से कह सकते हैं? प्रभु यीशु ने अधिकार से कहा, क्योंकि उसने वही भाषा काम में ली है जो दानियल ने काम में ली थी। प्रभु यीशु ने कहा था कि वह समय थोड़ा ही होगा, परंतु ऐसा होगा जैसा न था और न फिर कभी होगा। वह जानता था कि वह क्या कह रहा है और हम उसकी बात को मानेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 15 से 26 पद में हम इसे पढ़ते हैं। तब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, उसी समय अर्थात अंत के समय। दानियल नबी की पुस्तक 11 अध्याय उसके 35 पद और 40 पद, 12 अध्याय उसके 4 पद में हम इन सारी बातों को देखते हैं। और अंत के दिनों में यह हमें दानियल 10 के 14 में मिलता है। यह दानियल के दर्शन का अंत है और महाक्लेश के साथ समाप्त होता है। डॉक्टर रॉबर्ट कल्वर के अनुसार अंत का समय का अर्थ युगों के अंत से संबंधित नहीं है, यह लेखक के मन में घटनाओं के क्रम से संबंधित समय है। परंतु दानियल 10 अध्याय के 14 से स्पष्ट है कि भविष्यवाणी उस समय से संबंधित है जब प्रभु यीशु अपना राज्य स्थापित करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं मीकाएल को प्रधान स्वर्गदूत का पद दिया गया है। हम न्यायों की पुस्तक 9 अध्याय में पढ़ते हैं इसके बारे में। मीकाएल का अर्थ है जो परमेश्वर के स्वरूप में है। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 7 से 9 पद में पढ़ते हैं, उसके अनुसार वह शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाल फेंकेगा। मीकाएल शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाल फेंकेगा। वह इसराइल का रक्षक है और इसराइल के लिए खड़ा रहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 14 से 16 पद में यूहन्ना उसकी रणनीति का वर्णन करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तेरे जाति भाइयों अर्थात इसराइलियों, तब हम देखते हैं संकट का समय। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 21 पद में प्रभु यीशु ने इसे महाक्लेश कहा है। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान में रखिए कि हम बार बार इन बातों को सुन रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसराइल के बचे हुए भक्त सुरक्षित किए जाएंगे और इसे हम पाते हैं इसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 22 पद, रोमियो के पत्री 11 अध्याय के 26 पद, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 7 अध्याय का 4 पद। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जिस पर मुहर दी गई मैंने उसकी गिनती सुनी, अर्थात इसराइल के संतानों के सब गोत्रों में से 124,000 पर मुहर दी गई। अब हम आगे देखेंगे पुराने नियम के पवित्र जन और पापियों का पुनरुत्थान। दानियल 12 अध्याय के 2 पद में लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए। मेरे प्रियो, इस महाक्लेश के समय इसराइल के शेष भक्त जन सुरक्षित रहेंगे अर्थात रखे जाएंगे, और अन्य जातियों का एक महान समूह जो उद्धार पाएगा वह भी सुरक्षित रखा जाएगा। पुराने नियम के युग में शेष भक्तों में मरने वाले और उद्धार प्राप्त अन्य जाति जो मर गए वे महाक्लेश के अंत में फिर से जी उठेंगे और अनंत जीवन को पाएंगे। पुराने नियम के पवित्र जन कलीसिया के उठाए जाने के समय जीवित नहीं होंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 14 पद में स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। और पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे द्वारा जो पेंतिकोस्त के दिन से आरंभ हुआ मसीह में हैं और यह बपतिस्मा कलीसिया के उठाने पर ही समाप्त होगा। यह देह कलीसिया है। जी हाँ, पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से जो इसराइली थे कहा था कि वे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर विश्वासियों की देह कलीसिया में जोड़े जाएंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। कलीसिया के उठाए जाने के समय पुराने नियम के पवित्र जन जीवित नहीं होंगे क्योंकि राज्य में प्रवेश करने का समय महाक्लेश के अंत का समय होगा, जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आएगा। अब्राहम, इसहाक, याकूब आदि सब उसी समय जीवित होंगे। धर्मशास्त्र हमें स्पष्ट कहता है कि वे महाक्लेश के अंत में जी उठेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कितने अपनी नाम धराई और सदा तक घिनौने ठहरने के लिए, अर्थात ये पुराने नियम के खोए हुए लोग हैं जो श्वेत सिंहासन के समक्ष न्याय के लिए खड़े होंगे। परंतु 1000 वर्ष के राज्य के बाद, आप इसे पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 20 अध्याय उसके 11 से 15 पद में। तो आइए अब हम आगे पढ़ेंगे, दानियल 12 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। महाक्लेश के अंधकार में परमेश्वर के सेवक सितारों की नाई चमकेंगे। प्रसंगवश विश्वासियों को तो आज भी ऐसे ही चमकना है। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय के 15 पद में पौलुस कहता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। मेरे प्रियो, उस समय परमेश्वर के शेष भक्त संसार में परमेश्वर के गवाह होंगे और वे बहुतों को धर्मी बनाएंगे। धार्मिकता प्रभु यीशु है, एकमात्र धार्मिकता जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हमारी धार्मिकता तो मैले चित्रों के समान है, जिसे हम यशाया के पुस्तक 64 अध्याय 6 पद में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि हम धर्मी हैं और एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, परंतु हम केवल एक मैले चित्रों के समान हैं, क्योंकि हमारी धार्मिकता परमेश्वर के सामने मैले चित्रों के समान ही है। परमेश्वर हमारे कामों को नहीं देखता है, वह केवल प्रभु यीशु की धार्मिकता को देखता है और यह धार्मिकता विश्वास के द्वारा हमें दी गई है। मेरे प्रियो, हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे मुहर लगाकर अंत समय के लिए रखना। दानियल 12 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढाड़ करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। मेरे मित्रों, यहाँ अंत समय का अर्थ समय के अंत से नहीं है। यह पुस्तक उस समय के लिए मुहरबंद की गई है जिसे हम दानियल का 17वां सप्ताह कहते हैं। यह सच है कि हम इस समय के कुछ ही पहले हैं, परंतु हम इन बातों को कितना समझते हैं यह जानना कठिन है, क्योंकि इस भविष्यवाणी के समझने में अनेक विद्वानों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि हम इसके विषय में पूरी समझ नहीं रखते। इसका पूरा पूरा ज्ञान हमें उस समय प्राप्त होगा जब हम 17वें सप्ताह के समय में पहुंचेंगे। अतः हमें अपनी आंखें एक ही बात पर लगाना है जो तीतुस को पौलुस कहता है, दूसरे अध्याय के 13 पद में, उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढाड़ करेंगे। मेरे विचार में यह भविष्यवाणी के संबंध में बाइबल की खोज करना है। आज अनेक विद्वान भविष्यवाणी के गंभीर अध्ययन में लगे हुए हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। कलीसिया की महाशिक्षाओं का विभिन्न समयों में विकास हुआ है। आरंभ में बाइबल के प्रेरित वचन होने का विचार स्थापित किया गया था, प्रभु यीशु के ईश्वरत्व और मुक्ति के विचारों को भी स्थापित किया गया था। इसी प्रकार इतिहास में अन्य शिक्षाएं स्थापित की गई थी। मेरे विचार में आज हम भविष्यवाणी के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, जैसा पहले कभी नहीं किया गया था। लिखा है, ज्ञान बढ़ भी जाएगा। मेरे विचार में यह भविष्यवाणी के ज्ञान के बारे में है। यह सच है कि आज हर एक क्षेत्र में ज्ञान बढ़ गया है, परंतु यह विचार मुख्य रूप से भविष्यवाणी के ज्ञान से संबंधित है। दानियल 12 अध्याय उसके 5 से 7 पद में हम पढ़ते हैं, यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होंगी। मेरे प्रियो, ये पद हमें अध्याय 10 के आरंभ में ले चलते हैं, जब दानियल दर्शन देखता है सन का वस्त्र पहने हुए। मेरे मित्रों, यह प्रभु यीशु मसीह के बारे में है जो पहले देह धारण के बाद का प्रभु यीशु है। यहाँ उसके साथ दो पुरुष और हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर। वह पूछता है कि इन घटनाओं में कितना समय लगेगा। तो प्रभु यीशु कहता है कि 3.5 वर्ष लगेंगे। यह शैतान के 17वें सप्ताह का दूसरा अंतिम भाग है। आगे हम पढ़ते हैं, जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी। मित्रों, यह एक विचित्र बात है, परंतु इसका अर्थ है कि महाक्लेश के अंत तक विद्रोही इसराइल पूरी तरह टूट जाएगा, और अब समय परमेश्वर की ओर फिरने का एक महान कार्य होगा। आइए हम पढ़ें, दानियल 12 उसके 8 पद में लिखा है, यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? यद्यपि दानियल ने यह दृश्य देखा, वह समझ नहीं पाया कि वह क्या सुन रहा है और क्या देख रहा है। दानियल उलझन में पड़ गया था कि उसने जो देखा है वह कैसे पूरा होगा। तब आगे लिखा है दानियल 12 के 9 पद में, उसने कहा हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी हुई है। दानियल से फिर कहा गया कि ये बातें अंत समय में होने वाली घटनाएं हैं, जिन पर अभी कुछ समय के लिए मुहर लगा दी गई है, अर्थात इसे बंद कर दिया गया है। आगे हम देखेंगे उजाड़ने वाले घृणित वस्तु। दानियल 12 के 10 में लिखा है, बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं, वे ही समझेंगे। परमेश्वर के यह महान सिद्धांत दानियल के समय से अंत समय तक रहेंगे, चाहे युग कैसा भी क्यों ना हो। पहली बात यहाँ पर देखते हैं कि बहुत से लोग अपने को निर्मल और उजले करेंगे, अर्थात वे जो प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे। तीतुस 3 अध्याय के 5 पद में पौलुस कहता है कि यह हमारे धर्म के कामों से नहीं वरन परमेश्वर की दया के कारण होगा। दूसरी बात है दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, ये प्राकृतिक मनुष्य हैं। पहला कुरिन्थियों 2 उसके 14 पद में पौलुस लिखता है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तब हम तीसरी बात देखते हैं, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। दानियल 12 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। मेरे मित्रों, इस पद के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह सकते, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 15 पद में कि जब दानियल द्वारा कही गई उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को तुम पवित्र स्थान में देखो, यह इसराइली शेष भक्तों के लिए संकेत है कि महाक्लेश का आरंभ हो गया है। मेरे मित्रों, पशु की मूर्ति 1290 दिन मंदिर में खड़ी रहेगी, यह वास्तव में 3.5 वर्ष के 30 दिन बाद की घटना है। महाक्लेश का समय 1260 दिन का होगा। पता नहीं क्यों ख्रिस्त विरोधी के अग्निकुंड में डाले जाने के बाद भी 30 दिन तक वह मूर्ति मंदिर में रहेगी। हम दानियल 12 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। मेरे मित्रों, यहाँ दिनों का एक और क्रम दिया गया है जिसका अर्थ नहीं समझाया गया है, बस यही कहा गया है, क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1333 दिन के अंत तक भी पहुंचे। यह पुस्तक अंत समय के लिए मुहरबंद कर दी गई है। कभी कभी हम आवश्यकता से अधिक जानने की कोशिश करते हैं, परंतु हमें चाहिए कि हम उतना ही जानें जितना परमेश्वर हमें बताना चाहता है। आइए अब हम पढ़ते हैं दानियल नबी की पुस्तक 12 अध्याय उसका 13 पद, जो इस पुस्तक का अंतिम अध्याय और अंतिम पद है। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह, और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने शमौन पत्रस से कहा था कि वह मर जाएगा, उसी प्रकार दानियल से भी कहा गया कि वह मर जाएगा। पत्रस प्रभु यीशु के आगमन तक जीवित नहीं रहेगा, परंतु वह 1000 वर्ष के प्रभु राज में प्रवेश करने के लिए फिर जी उठेगा। लिखा है अपने निज भाग अर्थात प्रभु राज के आरंभ में वह पुराने नियम के संतों के साथ जी उठेगा। आगे हम पढ़ते हैं उन दिनों के अंत में अर्थात प्रभु राज के विपुल प्रवेश के समय। मेरे मित्रों, इस समय हमारे सामने यह भविष्य है जो कहता है कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आने वाला है। जी हाँ, हमें इस समय यही आशा बांधे रखना है और विशेष करके हम मसीहियों के लिए एक बहुत बड़ी आशा है कि हम फिर से प्रभु के राज में होंगे जहाँ किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई घुसखोरी नहीं होगी, परंतु हम परमेश्वर के साथ हमेशा आनंद और शांतिमय जीवन जिएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज दानिय्येल नबी की पुस्तक का अध्ययन समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ को प्राप्त किया है। मेरे प्रियो, अब हम आने वाले समय में एक नए पुस्तक में प्रवेश करेंगे और तब फिर नए रीति से नई बातों को सीखेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं ताकि जब हम नए रीति से नए अध्ययन में आए तो वे भी इस अध्ययन का लाभ उठा सकें। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, आप सबकी सहायता करे कि आप इन वचनों के अनुसार जीवन बिता सकें। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। इसके अलावा हमारा ईमेल ID है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।
तू है मसीह प्यार का, तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु, तेरी सच्चाई मुझ में हो। तू है मसीह प्यार का, तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू तेरी सच्चाई मुझ में हो। यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु, यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु, तू आशी मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु, तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज।